معزز خواتین و حضرات، تسلیم عارف اور ان کے ہم نواؤں کے گائے ہوئے بہت سارے واقعات آپ حضرات نے سنے۔ یہ جو واقعہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا کافی دن سے آپ کو انتظار تھا۔ لیجئے سماعت کیجئے گا جلوے عشق رسول، یعنی حضرت عبداللہ اسود اور کیسٹ کے بی سائڈ میں ایک یہودی لڑکے کا واقعہ، جس کے لکھنے والے شاعر ہیں ہندوستان کے عظیم شاعر محترم حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب، فنکار ہیں تسلیم عارف، اور اس کے میوزک کے فرائض انجام دیے ہیں آلون براؤن نے۔ لیجئے حضرات ملاحظہ کیجئے گا ایک بہت ہی حسین واقعہ، جس کو ہم جلوے عشق رسول کا عنوان دے رہے ہیں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر طریقے کا انسان بنایا ہے، کسی کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اگر ایک بار دیکھو تو دیکھتے ہی رہو، اور کسی کو اتنا بد شکل بنایا ہے کہ ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔
نبی کے چاہنے والے گلے گلزار رہتے ہیں،
ہزاروں مثل موسیٰ طالب دیدار رہتے ہیں، نبی کے چاہنے والے گلے گلزار رہتے ہیں، اسی لیے کہنا ہے۔
سنو یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ اسود کا،
سنو یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ اسود کا،
وہ جن کے دل میں سچا عشق ہے پیارے محمد کا،
وہ جن کے دل میں سچا عشق ہے پیارے محمد کا، وہ جن کے دل میں سچا عشق ہے پیارے محمد کا۔
سنو یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ اسود کا،
سنو یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ اسود کا،
سنو یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ اسود کا،
وہ جن کے دل میں سچا عشق ہے پیارے محمد کا،
وہ جن کے دل میں سچا
سامعین، پہلا بند ملاحظہ فرمائیے گا۔
لکھا ہے حضرت عبداللہ اسود سخت کالے تھے، بہت سے داغ ان کے چہرے پہ چیچک نے ڈالے تھے، بھیانک ایسی صورت تھی کہ جو بالکل نہ بھاتی تھی، جو ان کو دیکھتا تھا دل میں دہشت بیٹھ جاتی تھی، اسی باعث وہ اپنے رخ پہ پردہ ڈالے رہتے تھے، اکیلے جھاڑیوں میں چھپ کے وہ تنہائی سہتے تھے، کسی کے پاس جاتے تھے نہ کوئی پاس آتا تھا،
फकत एक माँ थी ऐसी जिसको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जा ना सकते थे, किसी तकरीब में शिरकत कहीं वो कर न पाते थे। सरे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में, ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्क बारी में। उधर से काफला गुजरा जो बातें करता जाता था, मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमजदों को और ज़ईफों को निभाते हैं, यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं।
सभी से आप करते हैं खुलूस व प्यार की बातें,
सभी से आप करते हैं खुलूस व प्यार की बातें,
सभी से आप करते हैं खुलूस व प्यार की बातें।
असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें,
असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की
अब्दुल्ला अस्वद जो बहुत ज्यादा काले और चेचक के दाग भी थे, दिन में आपको कोई देख लिया करता था तो डर जाया करता था, सिवाय आपकी माँ के कोई आपको देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन जब आप झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे तो मदीने जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और वो लोग आपस में हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए जा रहे थे। ये सुनकर अब्दुल्ला अस्वद उन काफिले वालों से क्या पूछ रहे हैं समाज फरमाइए।
ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देखकर दिल सबका सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ लाए हैं मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कूच फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में, कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आजिज़ाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिदे नबवी के दर पर तो वहां देखा।
रसूल अल्लाह कलमा फरमा है यूं जान सारों में,
रसूल अल्लाह कलमा फरमा है यूं जान सारों में,
रसूल अल्लाह कलमा फरमा है यूं जान सारों में,
के जैसे चौधरी का चांद होता है
حضرت عبداللہ اسود جب ان قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ایسا شخص ہے جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، قافلے والوں نے کہا کہ ہم مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار جناب محمد رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں جو اب مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے ہیں۔ کچھ دن کے بعد مدینے جانے والا جب ایک قافلہ گزرا تو عبداللہ اسود اسی قافلے کے پیچھے پیچھے مدینے پہنچ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی چلے جائیے۔ تو جس وقت عبداللہ اسود مسجد نبوی پہنچے اور حضور سرور کائنات کو دیکھا تو کیا حالت ہوئی، سماعت کیجیے گا۔ عجب حالت تھی اس دم حضرت عبداللہ اسود کی، ہوئے بے خود وہ دیکھی جس گھڑی صورت محمد کی، انہیں جب جھانکتے پیارے رسول اللہ نے دیکھا، کہا کیا بات ہے آؤ یہ بولے پیار سے آقا، یہ سن کر دو قدم آگے بڑھے اور رک گئے فوراً، تو فرمایا یہ آقا نے بتاؤ کوئی ہے الجھن، دکھاؤ اپنا چہرہ اور آگے بڑھ کے آ جاؤ، سناؤ آ کے اپنا مدعا بالکل نہ شرماؤ، ہٹایا چہرے سے پردہ بڑھے پھر دو قدم آگے، فرشتوں نے کہا خوش ہو نصیبے آج ہیں جاگے، رسول اللہ نے پھر ان سے فرمایا کہ پاس آؤ، پریشانی ہے کیا اپنا مفصل حال بتلاؤ، تمہاری عاجزی مسکینی یہ ہم کو پسند آئی، یہ سن کر آنکھ عبداللہ کی اشکوں سے بھر آئی، گرے وہ دوڑ کر قدموں پہ سرکار دو عالم کے، کہا ذرا نوازی پر ہمارے جان و دل صدقے، نبی ہیں آپ اللہ پاک کے ہم کو یقین آیا، بتایا قافلے والوں نے جو اسے سوا پایا،
عجب تھا حال اس دم حضرت عبداللہ اسود کا،
عجب تھا حال اس دم حضرت عبداللہ اسود کا،
عجب تھا حال اس دم حضرت عبداللہ اسود کا،
زبان و دل سے فوراً پڑھ لیا کلمہ محمد کا، زبان و دل سے فوراً پڑھ لیا کلمہ محمد کا، زبان و دل سے فوراً پڑھ لیا کلمہ محمد کا۔
جب عبداللہ اسود مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور کا دیدار کر رہے تھے، چہرے پر پردہ تھا، حضور سرور کائنات کی نظر جب پڑی تو کہا آؤ وہاں سے کیا دیکھ رہے ہو، ہمارے قریب آ جاؤ۔ یہ سن کر آپ دو قدم آگے بڑھتے ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے اور پاس آؤ۔ حضور کی یہ محبت دیکھ کر حضرت عبداللہ اسود آپ کے قدموں پر گر جاتے ہیں اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور سرور کائنات نے اس کے بعد اپنا دست شفقت آپ کے سر پر رکھ دیا اور اس کے بعد کیا ہوا سنیے گا۔
رسول اللہ نے پھر دست شفقت رکھ دیا سر پر،
सहाबा ने मुबारकबाद दी उनको गले मिलकर। वो ममनू ने करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बापू माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया शहेदी ने बताओ आरजू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरआन पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे पास मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला अस्वद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफा उनसे वो कुरआन पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा, हमारा नाम आगे चल ना पाएगा ख्याल आया। रसूले पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुराकर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। जवां है नेक है सूरत मिसाले माह अनवर है,
जवां है नेक है सूरत मिसाले माह अनवर है, जवां है नेक है सूरत मिसाले माह अनवर है।
सरवरे कायनात एक दिन अब्दुल्ला अस्वद को उदास देखकर पूछते हैं, ए अब्दुल्ला अस्वद क्यों उदास हो, क्या बात है? कहा हुजूर हमें परवरदिगार ने इतना बदशक्ल बनाया है कि हमारी तो शादी भी नहीं हो सकती, और अगर शादी नहीं होगी तो औलाद कैसे होगी, और जब औलाद नहीं होगी तो हमारी नस्ल यहीं ख़त्म हो जाएगी, हमारे बाद कौन हमारे ख़ानदान में आगे होगा, इस बात का अफसोस है। हुजूर फरमाते हैं सहाबाए इकराम से कि मदीने में किस मोमिन की लड़की खूबसूरत है, हुस्न में बढ़कर है। सहाबाए इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एक तज्जार यानी तिजारत करने वाले इंसान जिनके यहाँ एक बेटी बड़ी खूबसूरत है। हुजूर ये सुनकर फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला अस्वद जाओ, हम कहते हैं तुम उसी तज्जार की बेटी के साथ अपना रिश्ता खुद लेकर जाओ, देखो वो तज्जार तुमसे क्या कहता है। अब अब्दुल्ला अस्वद अपनी शादी का पैगाम लेकर खुद जा रहे हैं उसी तज्जार के यहाँ, क्या वो तज्जार इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा? समाप्त कीजिएगा। गए अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर। कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए। हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने के तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी ऐसी है कि घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये हमें मंजूर है शादी।
बुरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है,
गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है।
गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है।
अब्दुल्ला अस्वद ताजिर के घर गए और कहा सरकारे दो आलम ने भेजा है आपके यहाँ जो दुख्तर है उसकी शादी मेरे साथ कर दीजिए। वो ताजिर आपकी शक्ल देखकर कहता है कि चले जाओ, क्यों तुम्हारी मौत आई है, शुक्र करो कि तुम्हें सरकार ने भेजा है वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। आप मायूस होकर जब लौटने लगे तो वो लड़की अपने वालिद से पूछती है कि बाबा जान इतने गुस्से में आप किससे बातें कर रहे थे। कहा बेटी अभी एक लड़का बड़ा बदशक्ल आया था, कहने लगा कि मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूं, कहता था कि मुझे सरकार ने भेजा है। लड़की ये बात सुनकर कहती है कि बाबा जान अगर सरकारे दो आलम ने भेजा था तो आपने उसको वापस क्यों कर दिया, हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि सरकारे दो आलम ने मेरे रिश्ते की बात चलाई है और आप उस लड़के को बुलाकर मेरी शादी कर दीजिए, मैं राजी हूँ। सुनिएगा सामईन ये आखिरी बंद जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी इस वाकये के आखिर में क्या कहते हैं। बुलाया उसको ताजिर ने कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए, रसूल पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो आप सारे हालात से आगाही फरमाते हैं। सरकारे दो आलम कहते हैं कि तुम शादी तो पक्की करके आ गए लेकिन कुछ दामो दिरहम तुम्हारे पास हैं। कहा, हुजूर जब आपका साया मेरे सर पर है तो मुझे क्या ज़रूरत है। हुजूर खुश हो जाते हैं ये सुनकर और उनको कुछ दिरहम देकर फरमाते हैं कि जाओ जो शादी का ज़रूरी सामान होता है कम से कम बाज़ार से वही ले आओ। आप बाज़ार में गए तो शर्म की वजह से किसी दुकान पर नहीं जा रहे हैं, इस फिराक में है कि कोई साहबी मिल जाए तो उनके साथ किसी दुकान पर जाकर शादी का ज़रूरी सामान खरीद लूँ। इसी असना में असर का वक्त हो जाता है और फिर असर की नमाज के बाद मदीने में एक ऐलान होता है। वो ऐलान ये था कि कल हुजूर की क़यादत में सरहद पर एक लश्कर जाएगा क्योंकि दुश्मनों ने मदीने की सरहद पर हमला कर दिया है और इस काफ़िले के सरदार बनकर हुजूर खुद जा रहे हैं जिसको जाना है वो सुबह फज्र की नमाज के बाद हुजूर के साथ जाए। जब आपने ये ऐलान सुना तो सोचा कि न जाऊं जंग को तो पेशे रब शर्मिंदगी होगी और जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। गए तो थे शादी का ज़रूरी सामान खरीदने लेकिन आपने उन पैसों से उस दिरहम से जो हुजूर ने दिए थे एक तलवार खरीद ली और फिर क्या हुआ समाप्त कीजिए।
साहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे कहीं वापस न कर दें देख कर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने के एक तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने।
रसूल पाक आपकी शुजात देखकर हजरत उमर फारूक से कहते हैं कि ऐ उमर वो मुजाहिद कौन है जिसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ है और बड़ी तेजी से लड़ रहा है दुश्मनों से। ऐसा मालूम होता है कि अब्दुल्ला अस्वद आ गए हैं। कुर्बान जाइए उस नजर के जिसने इतनी दूर से भी अब्दुल्ला अस्वद को पहचान लिया। जब लड़ाई रुकी और इस्लाम के दुश्मन फरार हो गए शिकस्त खाकर तो क्या हुआ समाप्त कीजिए।
सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम किया शुक्रे खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला अस्वद ने
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जंग में और शहदाओं के साथ हजरते अब्दुल्ला अस्वद भी शहीद हो जाते हैं। ये देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आए लेकिन फौरन ही अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को हुक्म देता है कि जाओ ऐ जिब्रील और मेरे महबूब को ये खुशखबरी सुना दो। क्या
कहा? बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया तुम्हें शादी का अब्दुल्लाह अस्वद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत उनको दी जन्नत की आजादी के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे महबूब तुम फिक्र ना करो क्यों एक शादी के लिए गम कर रहे हो। हमने अब्दुल्ला अस्वद को वो मर्तबा अता फरमाया है पहले तो उन्हें एक खूबसूरत नौजवान बनाया और फिर 70 जन्नती हूरों के साथ उनकी शादी कर दी। तुम एक शादी के लिए क्यों अफसोस कर रहे हो। इसलिए जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी अपने मक्ते में कहते हैं
कहा है शौक ये जिब्रील ने के खास रहमत है
तुम्हारा उम्मती जो भी है वो